भाग्य तिलकोपाद लीलामृत की गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि गो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथं नितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनचैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखामितं च कृष्णकरुणा सिन्धुदीनबन्धुजगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदायके कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिसे नमः। ॐ लीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिए, बोर्ड में शुद्ध सेवक प्रभु जी का नाम है मगर प्रभु जी ने अचानक से मुझे फंसा डाले क्योंकि ना श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत में कभी पढ़ा नहीं और हिंदी पढ़ना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी थोड़ा साहस किया पढ़ने के लिए। तो वे माखन चोर के रूप में मुझे कृष्ण की कहानी बताने लगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं वह कहानी जानती हूँ, मैं माखन चोर कृष्ण के विषय में एक नृत्य देख चुकी हूँ। वे बहुत प्रसन्न हुए और हंसने लगे, बोले ओहो हाँ तुम जानती हो, सामन जी से यह भेंट एक पुराने मित्र से मिलने के समान थी क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल निस्संकोच और सुरक्षित अनुभव कर रही थी और मुझे अनुभव हुआ कि मैं जो खोज रही थी वह मुझे मिल गया है। यहाँ मैं अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर सकती थी और ऐसे प्रश्न पूछ सकती थी जिन्हें मैं स्कूल में हमेशा पूछना चाहती थी। प्रभुपाद ने लीला को दीक्षित किया और उनका नाम लीलावती रखा। उनकी स्वयं सेवा करने की उसकी उत्सुकता देखकर प्रभुपाद जी ने उससे अपना दोपहर का भोजन बनवाकर उसे भोजन बनाना सिखाया। सप्ताह के अंत में वे एक छोटी कक्षा पहले से चलाया करते थे जिसमें जानकी गोविंददासी नारायणी और अन्यों को कृष्ण के लिए भोजन बनाने की कला सिखाते थे। अब उन्होंने लीलावती को भी आने को आमंत्रित किया। वे कमरे में आगे पीछे घुमा करते थे और लड़कियों को सिखाते थे और आटा कैसे गूंदा जाता है, चपाती कैसे पकाई जाती है और दाएं हाथ हथेली में लेकर मसाले का अंदाज कैसे किया जाता है, सब्जी कैसे काटी जाती है और घी और मसाले में वो कैसे पकाई जाती है। आधारभूत भोजन का चावल चपाती आलू के साथ गोभी, किंतु वे लड़कियों को बताना चाहते थे कि भोजन ठीक ठीक कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी सिखा रहे थे माताओं को कि कैसे भोजन पर। श्रील प्रभुपाद जी हर एक चीज अपने शिष्यों को सिखाते थे, छोटी से छोटी कैसे भोजन पकाना चाहिए, कैसे सावधानता बरतना चाहिए, क्योंकि ना भगवान का सेवा में कितना सावधानी होना चाहिए। हाँ, और यहाँ तक कि माताओं को कैसे साड़ी पहनना चाहिए वो भी सिखाते थे, कैसे तिलक लगाना चाहिए, हाथ में चूड़ी कैसे पहनना चाहिए, सब कुछ सिखाते थे श्रील प्रभुपाद जी। हाँ, इतना कृपा होते श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे कुछ माताओं का नाम दिया गया, जानकी, गोविंद दासी, नारायणी। जो नारायणी माता जी है ना, वो अगले महीना आने वाले हैं, यहाँ पे सेमिनार है माता जी का, तो माता जी का नाम लिया गया। तो प्रभुपाद जी सब में एक्सपर्ट थे। हाँ, बोलते ना, एक साधु को, एक भक्त को घास काटने से लेके घोड़ा चढ़ने तक सब सेवा आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कैसे पकाया जाता है खाना, भोज कैसे बनाया जाता है वो बता देते। दाल था, चावल था, चपाती था, और आलू के साथ क्या था, गोभी था। आज हम लोग नहीं खा सकते, आज सुबह से ये सब नहीं खा सकते। एक बार की कथा है, एक बार संडे ऑफिस प्रोग्राम था, तो संडे ऑफिस प्रोग्राम प्रभुपाद जी दे रहे थे, और ऑफिस के बाद पता चला कि अभी तो कोई प्रसाद नहीं बना। तो प्रभुपाद जी, अरे अभी तक कोई प्रसाद नहीं बना, सब वेट कर रहे हैं प्रसाद के लिए। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, एक घंटा कीर्तन करो। सब कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने 45 मिनट्स में 5-6 प्रकार का आइटम बना डाले, और बना के सब तो बोला अभी प्रसाद तैयार है अकेले ऑफिस के लिए। तो सब चौंक गए, ऐसा कैसे, हाँ प्रभुपाद जी ने इतना कम समय में इतना सारा आइटम। तो प्रभुपाद जी एकदम एक्सपर्ट थे, और चमत्कार भी था तो हमारे लिए, सबके लिए, कि इतना कम समय में इतना सारा। माताओं के लिए तो चमत्कार नहीं है, क्योंकि ना वो बना सकते हैं, मगर प्रभु जी के लिए तो थोड़ा चमत्कार है ही ना। तो प्रभुपाद जी एकदम एक्सपर्ट थे। और प्रसाद के बारे में एक बार श्री प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी के पास छोटा सा बेल था, तो उनका जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता था तो बेल मारते थे, तो उनकी शिष्य लोग लेके आके ब्रेकफास्ट अर्पण करते थे प्रभुपाद जी के सामने। तो श्रील प्रभुपाद जी ट्रेन में थे, और जैसे 9 बजा तो घंटी मारे, तो एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद हम लोग तो ट्रेन में प्रसाद लाना ही भूल गए हैं। बोले अच्छा, तो ट्रेन एक स्टेशन में रुका, तो बाहर समोसा वाला समोसा समोसा करके बेच रहा था, तो प्रभुपाद जी हाथ डाले और एक समोसा लेके खाने लग गए। तो शिष्य लोग देख रहे थे क्या कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो थोड़ी देर के बाद एक शिष्य बोला, प्रभुपाद बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए था ना, और भोग भी नहीं लगाया हुआ। तो प्रभुपाद जी बोले, साधु को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, पता है। मगर हमको उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी जैसे शिक्षा दी उसको पालना चाहिए, मानना चाहिए। प्रभुपाद जी कुछ भी कर सकते हैं। कहीं पे एक बार क्या हुआ, शायद मालती माता जी और एक माता जी दोनों मिल के भोजन पका रहे थे, और उसमें रसगुल्ला भी पका हुआ था, रसगुल्ला भी बना हुआ था वहाँ पे था। तो प्रभुपाद जी वहाँ से जा रहे थे, तो देखे बहुत सारा व्यंजन था, रसगुल्ला था, रसगुल्ला देखे प्रभुपाद जी, अरे रसगुल्ला, तो एक उठाए मुंह में डाल दिए। तो मालती माता जी बोले, प्रभुपाद ये अभी तक ऑफर नहीं हुआ है, भोग नहीं लगा हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने, मुझे पता है। फिर प्रभुपाद जी वहां से चले गए, तो मालती माता जी कंफ्यूज हो गया, अरे ऐसे कैसे। तो ये प्रभुपाद कर सकते कुछ भी, हम नहीं कर सकते ना, बिना भोग लगाए हम नहीं खा सकते, मगर प्रभुपाद कर सकते। एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे ना, वो जो फोटो में भोग, एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे, तो कुछ समोसा लिए, शायद मथुरा कहीं पे तो है, समोसा लिए बाहर से, इलाहाबाद में ना, हाँ समोसा लिए, और प्रभुपाद जी बोले भोग लगाओ। तो उनके पास भगवान का कोई फोटो नहीं था, तुलसी भी नहीं था, तो एक भक्त ने क्या किया, प्रभुपाद जी का फोटो निकाला रखा और समोसा को भोग लगाया, और नमो विष्णुपादाय कृष्ण पुष्टाय बोले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में प्रणाम मंत्र गाने लगा। तो प्रभुपाद जी बोले, मूर्ख सामने बैठा हूँ नहीं दिखते, फोटो में भोग लगा रहा। जब मैं सामने बैठा हूँ तो मेरे फोटो को भोग लगाने का क्या जरूरत है। भगवान सामने ही खड़े है तो भगवान को फोटो में लगाने का जरूरत है। वैसे प्रभुपाद जी बोले, मैं सामने ही बैठा हूँ और आप मेरे फोटो को बाद में रख के उनको मेरा प्रणाम मंत्र गा रहे हो। प्रभुपाद जी उसने से उठा के खा डाले। इतना सारा लीला है। एक बार कोई माता जी नाम नहीं है, एक बार ट्रेन में ही सफर हो रहा था प्रभुपाद के साथ में, तो प्रभुपाद के लिए प्रसाद बनाना था ट्रेन में, कुछ लेके नहीं आए थे, मगर उन्होंने पेंट्री कार्ड में गए, वो ट्रेन में होते हैं ना पेंट्री कार्ड जहाँ पे भोजन बनता है, तो शायद मालती माता या यमुना माता मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आता है, तो माता जी जाके वो पेंट्री कार्ड में रिक्वेस्ट किए कि मेरे गुरु महाराज हैं उनके लिए मुझे कुछ पकाना है यहाँ पे, तो उन्होंने मना कर दिए, बोले नहीं आप नहीं पका सकते यहाँ पे तो बाहर लोग के लिए बनता है, यहाँ पे नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते किसी को भी, बहुत रिक्वेस्ट किए वो माना नहीं, तो बोले कि नहीं दोगे तो पक्का ट्रेन से कूदी मार के मर जाऊंगा मैं, बोला कि अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं मैं अभी कूदी मारता, मैं जा रहा हूँ अभी कूदी मारूंगा, मेरे गुरु महाराज के लिए मुझे बनाना ही, आपको देना ही पड़ेगा, तो फिर अंतिम में उसको देना ही पड़ा, बोला ठीक है बनाओ बाबा मगर कूदी मत मारो ट्रेन से। तो ऐसे उनके शिष्य लोग प्रभुपाद जी के लिए काम देने को भी तैयार थे, हमेशा प्रभुपाद जी का हर क्षण उनका ध्यान रखते थे, देखिए ऐसे जो माता जी बोले मैं खुद ही मार दूंगा, तो ऐसा है, एक बार प्रभुपाद जी की बातों में कितना विश्वास था उनकी शिष्यों के ऊपर, जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। एक बार मैं वृंदावन में जब था स्टोरी सुना था, एक सन्यासी थे, तो सन्यासी ऐसा तो पूरा विरक्त रहते हैं ना, तो मायापुर में गंगा के प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उनके साथ कुछ शिष्य थे और वो सन्यासी शिष्य भी थे, उनको संकोच हो रहा था पूछने के लिए, फिर भी उन्होंने प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी प्रश्न है मेरा, बोले पूछो क्या प्रश्न, अगर कोई सन्यासी का कोई माता के प्रति कोई माता जी से आकृष्ट हो जाएंगे तो क्या क्या करना चाहिए सन्यासी को, तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि क्या करना है, सन्यासी अगर कोई माता जी के चक्कर में पड़ गए तो उनको तुरंत प्राण त्याग देना चाहिए, उनको तुरंत प्राण त्यागना चाहिए, तो सन्यासी शिष्य तुरंत गंगा में कूद गए, तुरंत कूद गए, देखो प्रभुपाद जी की बात में कितना उनका विश्वास, प्रभुपाद जी ने तुरंत प्राण छोड़ना चाहिए, तुरंत कूद गए गंगा में और मर गए वो, फिर प्रभुपाद जी तब से बोले कि ठीक है कलयुग में तो सन्यासी लेना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक ब्रह्मचारी मुश्किल है, अगर कलयुग में सन्यास बहुत ये है, ठीक है सन्यासी से, एक्चुअली सन्यासी से गृहस्थ आना शादी करना मीन्स क्या है, उल्टी हुआ चीज को वापस खाना, सन्यासी बोलते हैं ना उल्टी हुआ चीज को वापस खाना, तो एक सन्यासी अगर शादी करता है तो एक उल्टी हुआ चीज को वापस खाने जैसा है, कितना गंदा है, तो ऐसा है, तो प्रोपोजल ठीक है कलयुग के लिए इतना मैं छूट देता हूँ, सन्यासी शादी कर सकते हैं अगर ऐसा परिस्थिति है तो, तो ऐसा प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी ऐसे बोले उस टाइम पे ऐसा स्थिति देखकर, क्योंकि ना उन्होंने बोला तुरंत मर जाना चाहिए सन्यासी को, तो तुरंत मर गए थे वो, तो ऐसा उनके शिष्यों को उनके बात पर इतना एकदम दृढ़ संकल्प था, और प्रभुपाद जी को भी क्योंकि ना प्रभुपाद जी कृष्ण के ऊपर उतना ये था विश्वास था, इसलिए उनके शिष्यों का भी उन प्रभुपाद जी के ऊपर उतना विश्वास था, सिर्फ प्रभुपाद जी हरिनाम के ऊपर, क्योंकि सिर्फ प्रभुपाद जी बाहर देश में जाके क्या किए, सिर्फ हरिनाम लिए थे, सिर्फ हरिनाम ही लिए थे, सिर्फ हरिनाम के द्वारा ही सारे जीव का उद्धार किया, और कुछ तो उधर जाके बड़ा बड़ा थोड़ी ना प्रवचन दिए थे, पहले जाके क्या प्रभुपाद जी खुद लेक्चर में बताते हैं ना, मैं गया था मेरे पास कुछ नहीं था, एक छोटा सा डुबडुबी था, और डुबडुबी बजाकर मैं एक गार्डन में बैठ के हरे कृष्ण बोला, यही सारे लोग आके उसमें नाचने लगे और सब एक एक करके भक्त बनने लगे, तो प्रभुपाद जी का पूरा विश्वास था कृष्ण के ऊपर उनके नाम के ऊपर, प्रभुपाद जी बताया करते थे अगर कोई हरिनाम के ऊपर विश्वास है उसका तो उसने पक्का भगवान कृष्ण को पालेगा, इसी जन्म में भगवान कृष्ण को पाएगा वो। एक बार की कथा है, श्रील प्रभुपाद जी तभी तक विदेश नहीं गए थे, इंडिया में ही थे, तो श्रील प्रभुपाद जी पहला उनका प्रीचिंग सेंटर क्या था, झांसी था ना, फर्स्ट प्रीचिंग सेंटर झांसी में कुछ लीग्स ऑफ डिवोटीज करके एक ट्रस्ट बनाए थे, तो श्रील प्रभुपाद जी वहां पे प्रचार शुरू किए थे झांसी में, तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने कमरे में थे, एक्चुअली उनका पहला शिष्य था उनका नाम भास्कर आचार्य प्रभु ना, आचार्य आचार्य प्रभाकर, हाँ तो आचार्य प्रभाकर करके एक शिष्य थे जो कि इंडिया में पहले उन्होंने दीक्षा दिया था श्री प्रभुपाद जी ने उनके सन्यास के बाद, तो उन्होंने वो भास्कर क्या बोले, हाँ आचार्य प्रभाकर प्रभु जो है वो नीचे कमरे में रहते थे और श्रील प्रभुपाद जी फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, अचानक से 12 एक बजे रात को आवाज आ रहा था दुम 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 करके, जन्माष्टमी था, रात को 12 एक बजे आवाज आ रहा था। तो ये जो भक्त थे प्रभुपाद जी का शिष्य, उनको बोला इतना रात को क्या आवाज आ रहा है ऊपर से। तो उन्होंने देखने के लिए गए फर्स्ट फ्लोर में और जाके खिड़की खोल के देखे, तो प्रभुपाद जी का रूम बंद था, खिड़की से देखे तो प्रभुपाद जी एकदम प्रसन्न थे और प्रभुपाद जी के शरीर से एकदम तेज निकल रहा था, एकदम प्रफुल्लित थे। इतना खुशी कभी नहीं देखे थे उन्होंने प्रभुपाद जी को, इतना प्रफुल्लित थे और हाथ में मृदंग लिए हुए थे और मृदंग को जोर जोर से बजाकर कूद कूद के हरे कृष्ण महामंत्र गाकर नाच रहे थे श्री प्रभुपाद जी। तो ये भक्त देखे आश्चर्य हो गए, इतना रात को और इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी नाच रहे हैं मृदंग लेते हुए। तो उन्होंने उस टाइम पे प्रभुपाद जी को कुछ बोले नहीं क्योंकि ना डिस्टर्बेंस नहीं किए आगे, मगर उनको नींद नहीं आ रहा था रात भर। और उन सुबह उठने के बाद उन्होंने प्रभुपाद जी के कमरे में गए, प्रभुपाद जी को प्रणाम किए और पूछे प्रभुपाद जी आप रात को कीर्तन कर रहे थे? तो प्रभुपाद जी बोले कि हाँ, एक्चुअली उन्होंने इनको बताए नहीं थे, सिर्फ उनकी शिष्यों के बताए थे कि मुझे मिलने के लिए स्वयं कृष्ण आए थे रात को। और प्रभुपाद जी की वो भक्त जब देखे थे प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी के गले में एक हार था, वो कौन सा, कदम का हार था, और इतना बड़ा बड़ा कदम, ऐसा नॉर्मली कदम इतना छोटा होता है और झांसी में ऐसा कदम तो कहीं भी नहीं मिलता है। और प्रभुपाद जी के गले में एकदम गले से लेके चरम तक इतना बड़ा हार था और इतना बड़ा बड़ा कदम का हार था एकदम। तो वो भक्त देखे थे और आश्चर्य हो गए थे, ये कदम झांसी में कहां से आया, वो भी प्रभुपाद जी के पास कहां से आया। तो प्रभुपाद जी सुबह बोले कि भगवान कृष्ण अपने गले से हार निकल के मेरे गले में डाल दिए और बताया कि भगवान कृष्ण आए, मेरे सर पे ऐसे हाथ घुमाए और अपना गले का हार मुझे मेरे गले में डाल दिए और भगवान चले गए। बाद में क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो बाद में रात भर भगवान श्री प्रभुपाद जी मृदंग लेके नाच रहे हैं रूम में, हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से चिल्ला के गा रहे थे। तो श्री प्रभुपाद जी बताए तभी कि अगर हम हरि नाम के ऊपर विश्वास रख के हरि नाम को अगर दृढ़ता पूर्वक लेंगे तो कृष्ण जरूर आएंगे हमारे पास हमको आशीर्वाद देने के लिए, इसलिए प्रभुपाद जी वहां पे बता रहे थे। तो ऐसा इतना ये विश्वास था श्री प्रभुपाद जी को कृष्ण को। जब श्री प्रभुपाद जी भी जब जा रहे थे अमेरिका, तो जब हार्ट अटैक आया तो उनको भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान अभी आप ही की नाम प्रचार करने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मेरा विश्वास है अवश्य रक्षी वे कृष्ण, आप अवश्य रक्षा कर, अगर आप मुझे रक्षा करेंगे तो आप ही का नाम प्रचार करूंगा, मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है इसमें। और मेरा गुरु महाराज जी बोले हैं कि भगवान का नाम पश्चिम देश में जाके प्रचार करो, तो इसीलिए मैं आपका नाम प्रचार करने जा रहा हूँ। इसलिए उनका कितना तीन बार हाथ अटैक था शायद, है ना, तीन बार, दो बार दिल का देर आया था, तो उसमें भगवान स्वयं आके उनको रक्षा किए थे। तो विश्वास था श्री प्रभुपाद जी का उतना। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी का कितना दक्षता हम देखे ना, प्रभुपाद जी सब कुछ में दक्षता थे, एकदम ये थे, एक्सपर्ट थे। उसके बाद मुकुंद बता रहे हैं, एक दिन उत्सुकता बस मैं स्वामी जी की भोजन कक्षा देखने गया और अंदर गया और स्वामी जी की रसोई घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। महिलाएं भोजन बनाना सीख रही थी और स्वामी जी ने मुझसे कहा, तुम क्या कर रहे हो? ओहो, मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को देखने आया था। तब तो स्वामी जी ने कहा, तुम परमात्मा की ओर लौट रहे हो कि पत्नी की ओर? वहां पे मुकुंद आके देख रहे थे, इसलिए प्रभुपाद बोले आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, माता जी लोग भोजन बना रहे हैं, आपका क्या काम है यहाँ पे? बोले कि कुछ नहीं प्रभुपाद, मैं मेरा पत्नी को देखने आया था। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप भगवान की ओर लौटना चाहते हो कि अपनी पत्नी की ओर? हर एक हंसने लगे और मुझे अनुभव हुआ कि मेरा वहां जाना किसी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चला आया। किसी को अच्छा नहीं लगा उनको जब गए थे। इस घटना से मुझे स्वामी जी की गंभीरता के बारे में विचार आया। मैंने एक तो यह सीखा कि मुझे अपनी पत्नी में इतना आसक्त नहीं होना चाहिए और दूसरी बात यह कि स्त्रियों के साथ उनका संबंध और जो कुछ वे उन्हें सिखा रहे थे वो सब सचमुच बहुत गंभीर मामला है। यह पति पत्नी के बीच अटखेलियों भरे संबंध की तरह नहीं है। वे रसोई घर में स्त्रियों को कई घंटे भोजन बनाना सिखाते थे, इसलिए वे बहुत उत्साहित थे। लीलावती को गर्व सा होना लगा। भक्तों के बहुत से कॉलेज के स्नातक नहीं थे और प्राचीन साहित्य का छात्र तो कहीं नहीं था। लीलावती कभी कभी स्वामी जी के लिए टाइप का काम करती थी, उनसे आदेश का पालन करती थी, या प्रातःकाल उनके कमरे में फूल लाती थी और उन्होंने तत्काल उसे विशेष रूप से अपना एकमात्र रसोईया चुन लिया था। और कुछ दिनों की पाक शिक्षा के बाद स्वामी जी ने कहा था, बहुत अच्छा तुम भोजन बनाओ, बहुत अच्छा तुम भोजन बनाओ। और उसका निरीक्षण करने के लिए वे अब केवल कभी कभी जाते थे। एक दिन जब उन्होंने उसे रोटी बेलते हुए देखा तो वे बोले, ओहो तुमने बहुत अच्छा सीख लिया है। प्रभुपाद जी बहुत खुश होते थे अपने शिष्य को जब देखते थे, सेवा में एकदम तत्पर रहते थे। जैसा कौन थे वो प्रभुपाद जी का रथ यात्रा में फोटो लगाते हैं ना, दयानंद प्रभु ना, दयानंद प्रभु, दयानंद ना, जयानंद या दयानंद, जयानंद। हाँ तो जयानंद प्रभु वो रात भर ऑटो चलाते थे ना प्रभु जी, टैक्सी चलाते थे रात भर। हाँ उनको कैंसर भी था, रात भर टैक्सी चलाते थे और दिन भर सेवा करते थे। हाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे बहुत, तो इतना सेवा करते थे। हाँ रात भर टैक्सी चलाना और उन सबका पैसा मंदिर में देना और साथ में दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, और आश्रम में देखते थे कोई भक्त का अगर कपड़ा धुलावा नहीं रहे तो सारा कपड़ा धो देते थे। जैसे कि हमारे भक्त लोग, न्यू भक्त लोग जब देखते हैं ना आश्रम में, सारा कपड़ा उठा के धो डालते हैं। हाँ खास करके प्रभु जी बहुत अच्छा सेवा करते हैं। तो वो भक्त ऐसे थे, सारा रूम जाके साफ करते थे सब भक्तों का, और जिनका कपड़ा नहीं धोया जाता धो लेते थे। इतना एकदम पूरा मेहनत करते थे, 24 घंटा कृष्ण के सेवा में लगे रहते थे, भक्तों के सेवा में लगे रहते थे। तो प्रभुपाद जी एक बार बोले कि जयानंद अगर जब भी नहीं करेगा तो इसी जन्म में भगवतधाम जाएगा, ये मेरा वचन है, क्योंकि वो इतना सेवा कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं, हम सेवा करेंगे जप नहीं करेंगे, हमारे लिए जप महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी उस टाइम में जयानंद प्रभु के लिए बोले थे कि अगर जप भी नहीं करेंगे वो इतना सेवा कर रहे हैं ना, वो भगवतधाम पक्का जाएंगे इसी जन्म में। देखो अभी हम लोग जयानंद प्रभु का आविर्भाव तिरुवा दिवस भी मनाते हैं ना प्रभु जी, वैष्णव कैलेंडर में उनका नाम है। हाँ प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है कि उनका नाम वैष्णव कैलेंडर में आना चाहिए और उनका आविर्भाव तिरुवा मनाना चाहिए। ऐसे ऐसे भक्त हुए थे, अभी भी है। तो इतना अगर हम प्रभुपाद जी की सेवा में हमारा पूरा जीवन अर्पण कर देंगे भगवान समय, तो प्रभुपाद जी बोले अगर आपको भगवत धाम की आगे वाला गेट खुला नहीं रहेगा तो मैं पीछे वाला गेट खोल के अंदर घुसा डालूंगा आपको। तो प्रभुपाद जी ये बोले हैं। तो इतना एकदम हम दृढ़ता पूर्वक अगर सेवा करेंगे तो जरूर हम भगवत धाम जाएंगे। तो बहुत खुश हुआ करते थे प्रभुपाद जी जब अपने शिष्यों को देखते थे। हाँ और प्रभु जी बता रहे हैं कि वो पहला रथ जो है ना जयानंद को बनाए थे, बहुत मेहनत किए थे बनाने के लिए, यहाँ तक कि कोई दारू पीने वाला के भी उसमें लगाए थे ना रथ बनाने में। कोई दारू पीने वाला था, हाँ एक दारू पीने वाला था तो वो रथ बना सकते थे। तो उसमें उनको लगाना था तो उन्होंने पूछा आप क्या लेंगे रथ बनाने के लिए, उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दारू चाहिए। और पहले तो आने को तैयार नहीं थे, बाद में जयानंद प्रभु बोले कि ठीक है आपको दारू दूंगा आप आओ सेवा करो। तो उनको दारू का बोतल खुद जयानंद प्रभु जाके खरीद के ला के दिए थे, दारू पिलाए थे सेवा के लिए। तो प्रभुपाद जी के पास किसी ने कंप्लेन किया कि जयानंद प्रभु ने दारू पिला के सेवा ले रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोले कि जयानंद कर सकता है ऐसा। किसी ना किसी प्रकार से जीव को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसको किसी ना प्रकार से स्वीकृति तो मिल गया ना, स्वीकृति मिल गया, भगवान का रथ बनाया उसने है ना। तो ऐसा इतना सेवा करते थे जयानंद प्रभु। ठीक है तो स्वामी जी का भोजन ठीक से बनाना, सही मसाला डालना, किसी चीज को जलाना नहीं और बिल्कुल समय पर तैयार कर देना, ये सब कुछ सचमुच एक चुनौती था। टाइम पे करना पुजारी लोग के लिए एक चुनौती है कि नहीं। एकदम परफेक्ट टाइम पे भोग लगाना, परफेक्ट टाइम पे अल्टर खोलना, हाँ परफेक्ट टाइम पे आरती होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी एकदम पंचल एकदम इसलिए बोले कि 4:30 बजे अल्टर खुलना ही चाहिए। बाकी मंदिर में आप देखे रहेंगे लेट भी होता है ना, कहीं ऐसा मंदिर है कि उतना पंचुअल नहीं है वो लोग, कभी कभी लेट भी खोलते हैं, कभी कभी भोग भी लेट लगाते हैं, और रोज भगवान को ड्रेसिंग नहीं होता है। मगर प्रभुपाद एकदम स्ट्रिक्ट थे, बोले थे भगवान को अच्छा ड्रेसिंग होना चाहिए और भगवान का टाइम पर भोग लगना चाहिए, टाइम पर अल्टर खुलना चाहिए। कभी कभी हमारे यहाँ पे अगर 2 मिनट भी लेट हो जाता है अल्टर खुलने में, सारे भक्त बोलने लगे थे क्या हो गया, इतना लेट क्यों हो रहा है आज, है ना, क्योंकि ना एक आदत सा पड़ गया हमको प्रभुपाद जी का रूल्स के चलते चलते, और नियम मानते मानते एक 7:15 को अल्टर खुलना ही चाहिए। 5 मिनट लेट होता है पता ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है इसलिए लेट हुआ आज, क्योंकि ना हमको प्रभुपाद जी का रूल्स मानते मानते एक आदत हो गया प्रभुपाद जी का रूल्स मानते हुए, है ना, तो थोड़ा भी लेट होता है तो एकदम हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ। तो प्रभुपाद जी एकदम स्ट्रिक्ट थे, एकदम स्ट्रिक्ट थे, एकदम टाइम पे खुलना चाहिए, एकदम टाइम पे खुलना चाहिए। तो यहाँ पे एक भक्तों के लिए एक चुनौती था, एकदम टाइम पर कितना मसाला डालना चाहिए और नहीं जलना चाहिए कोई सब्जियां या कोई भोग नहीं जलना चाहिए, बिल्कुल समय पर तैयार होना चाहिए, ये एक चुनौती था। भोजन तैयार करने तक लीलावती को पसीना आ जाता और तनाव के कारण वो रोने भी लगती। तो भोजन बनाते बनाते बिचारी का पसीना आ जाता था लीलावती का, जो नया नया दीक्षित ली ना उनका नाम लीला था, लीला उनका नाम प्रभुपाद जी लीलावती दिए, उन्होंने सीख के भोजन बनाना। अभी भोजन बनाते बनाते कभी कभी उनका शरीर से एकदम इतना पसीना आ जाता था, एकदम तनाव के कारण बिचारी बैठ के रोने लग जाती थी। होता है ना कभी कभी ऐसा, इतना सेवा आता था ना, खास करके माताओं का ऐसा अनुभव है, ज्यादा सेवा आ जाएगा ना तो बिचारी कुछ बोल नहीं पाएंगे, किसको सेवा है भगवान का, अब क्या बोलेंगे, बैठ के रोने लग जाएंगे। तो ऐसा लीलावती कभी कभी क्या करती थी, बैठ के रोने लग जाती थी, वो रोने भी लग जाती। किंतु जब वो स्वामी जी का भोजन लाती तो वे उससे एक खाली प्लेट लाने को कहते और वे अपनी प्लेट से उसका हिस्सा निकालते और उसे अपने साथ खाने को आमंत्रित करते। पहले कुछ दिन तक लीलावती ने प्रसाद के अद्भुत स्वाद के विषय में टिप्पणी की और स्वामी जी या तो मुस्कुरा देते या दृष्टि ऊपर कर लेते। किंतु उसने देखा कि स्वामी जी खाते समय बोलते नहीं, वरन भोजन पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वे पालथी मानकर बैठते थे। हाँ पालथी मान मीन्स क्या, ऐसे बैठना। हाँ तो भोजन कैसे बैठ के खाना चाहिए, पालथी मारकर बैठते थे। उनके शरीर प्रसाद की प्लेट के ऊपर झुका हुआ था और वे दाएं हाथ से खाते थे। कौन से हाथ से, दाएं में थी ना, तो राइट हैंड से खाना चाहिए, लेफ्ट हैंड से नहीं। और प्रभुपाद जी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि भोजन प्रसाद लेते वक्त बात नहीं करना चाहिए। हम लोग ज्यादा बात करते प्रसाद लेते वक्त। हम लोग जब आश्रम में प्रसाद लेते हैं 9 से 10 ज्यादा बात होता है उसमें। खैर भक्त लोग तो ऐसा दिन भर उतना बात नहीं करते, नहीं मिलते एक साथ में। भक्त लोग मिलते हैं तो प्रसाद के टाइम से ही मिलते हैं, 9 बजे सब लोग एक साथ में भागवतम क्लास के बाद एक साथ में बैठते हैं ना, तो एक आनंद होता है, सारे भक्त मिलके खा रहे हैं, एक परिवार है ना हमारा, तो बहुत खुशी होता है। कुछ ना कुछ बातें करते हैं, कोई कृष्ण के बारे में चर्चा, प्रभुपाद के बारे में चर्चा, गुरु महाराज के बारे में चर्चा, कभी कभी भक्तों के बारे में भी गुणगान होता है। तो ये एक आनंद होता है कि एक साथ में मिलकर बैठ के प्रसाद के टाइम पे, क्योंकि संध्या समय में भी 5 बजे सारे लोग नहीं मिल पाते, यहाँ वहाँ प्रोग्राम में रहते हैं, तो सुबह के टाइम पे हम लोग भी बातें करते हैं। मगर प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं कि प्रभुपाद एकदम गंभीर रहते थे प्रसाद के टाइम और उनका ध्यान एकदम प्रसाद के ऊपर रहता था। तो देखो यहाँ पे लीलावती ने प्रसाद बनाते थे ना, एक भक्त का कथा याद आया। एक बार एक भक्त थे चलो प्रभुपाद जी का शिष्य, तो उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करते थे और कुछ दिन उनका शायद पर्सनल असिस्टेंट भी बन चुके थे। तो प्रभुपाद जी के लिए बहुत अच्छा मीन्स बहुत अच्छा भोग बनाते थे और उनका सेवा था भोग बनाना, भगवान को भोग अर्पण करना और जो प्रसाद है उनको प्रभुपाद जी को अर्पण करना, उनका सेवा था कहीं दिनों तक वो सेवा किए। एक बार अचानक से क्या हुआ पता नहीं, उसी कहीं पे बाहर गए थे या कुछ तो हुआ था, अचानक से उन्होंने मंदिर छोड़ दिए। तो तो उपा जी को खबर मिला कि वो आपका जो रसोईया है जो कुक करते थे वो टेम्पल छोड़ दिए हैं। तो प्रभुपाद जी ने हुआ क्या उनको, क्यों टेम्पल छोड़े हो? मतलब पता नहीं अचानक से मंदिर छोड़ के चले गए। अच्छा ठीक है, आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आएंगे कभी ना कभी। कुछ दिन के बाद एक भक्त ने प्रभुपाद जी को आके बताया कि प्रभुपाद जो भक्त थे ना आपके, जो मंदिर छोड़ के गए थे ना, वो तिलक भी नहीं लगा रहे अभी, कंठी माला भी निकाल दिए। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा भी इस्कॉन से दूर जाएंगे, भक्तों के संग से दूर जाएंगे, तो हमारा भी हालत यही होने वाला है। तिलक भी नहीं दिखेगा, कंठी माला भी नहीं दिखेगा, धोती कुर्ता भी नहीं दिखेगा, और हेयर स्टाइल भी अलग अलग हो जाएगा, कलर भी लगेगा, क्या क्या लगेगा पता नहीं। तो यहाँ पे शिक्षा मिलता है, अगर हम तो उपाज की संस्था को छोड़ के थोड़ा भी दूर जाएंगे तो माया पक्का पकड़ लेगा। तो ऐसा प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद वो भक्त ने जो छोड़ के गए थे उन्होंने कंठी माला भी निकाल दिया, तिलक भी लगाना बंद कर दिया। प्रभुपाद बोले ऐसा हो गया, अच्छा ठीक है, जो कृष्ण की इच्छा है क्या करें। प्रभुपाद जी कई भक्तों के साथ खबर दिए, मगर उन्होंने इतना भौतिक संसार में लिप्त हो गए थे, दीक्षित भक्त थे यहाँ तक, वो सिर्फ प्रभुपाद जी को छोड़ के गए, इसलिए उनका यह हाल। क्योंकि ना जैसा संग वैसा रंग होता है ना, उनका संग भौतिक संसार के लोगों के साथ हुआ था, इसलिए उनका एकदम रंग बदल गया था, एकदम भौतिकवादी बन गए थे। यहाँ तक कि बोलना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में भी अलग अलग अमसन बोले, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो बूढ़ा है, मुझे हमेशा परेशान करता था, रोज भोग बनाने बोलता था, एकदम भौतिकवादी बन गए थे, सब कुछ भूल गए थे उन्होंने। तो प्रभुपाद जी को ये सब खबर मिला कि ऐसा ऐसा वो आपके बारे में बता रहा है, सब कुछ भूल गया है, भक्ति नहीं कर रहा है, जप माला तो छोड़ो, कंठी माला निकाल दिया है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अभी सिर्फ प्रार्थना कर सकते भगवान को उनके लिए। तो देखिए प्रार्थना, प्रभुपाद जी बता रहे प्रार्थना करना, तो प्रार्थना में कितना ताकत है। अगर हम एकदम किसी खुद के लिए तो प्रार्थना अलग है, अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर, हमारा भी अनुभव है कि दूसरे के लिए प्रार्थना किया था तो वो तुरंत उसका फल मिला था। मंगलारती में जब भगवान का दर्शन लेते प्रार्थना करेंगे एकदम एकदम ध्यान से, तो भगवान जरूर प्रार्थना सुनते हैं हृदय से अगर करेंगे तो। प्रभुपाद जी बोल रहे हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो ऐसा किया तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसा तो बहुत बता रहे थे, मगर वो प्रसाद कभी नहीं भूल पाते थे, उनको प्रसाद बहुत अच्छा लगता था, बाहर उनको खाने को नहीं जमता था, वो भले कितना भी बाहर का खाना उनको जमता नहीं था, वो हमेशा बताया करते थे तो यार कुछ भी हो इस्कॉन का जो खाना ना एकदम फर्स्ट क्लास रहता था, एकदम जबरदस्त रहता था। वो हमेशा प्रसाद का गुणगान करते थे, भले भक्तों का अवगुण करते थे मगर प्रसाद के बारे में हमेशा गुणगान करते थे। वो खाना अभी तक मेरा दिमाग में गया नहीं, वो टेस्ट अभी तक मेरा जीभ से नहीं छूटा, बहुत अच्छा रहता था प्रसाद। तो उनका इच्छा था कभी ना कभी छुप के भी जाके मैं प्रसाद खा के आऊंगा इस्कॉन में। तो एक बार क्या हुआ, उनको पता चला प्रभुपाद जी सेंटर में नहीं है, वो कहीं विदेश का बात है, मैं एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, मैं वृंदावन में सुना था ये स्टोरी, मैं भी आंटलैटी का। तो वो भक्त ने एक बार उनको पता चला कि प्रभुपाद जी ने, वो प्रभुपाद जी को मुंह दिखाना नहीं चाहते थे क्योंकि ना भाग के गए, जैसे हम सुने थे ना भगवान कृष्ण चोरी किए तो बदमाशी किए तो मुंह नहीं दिखाना चाहते थे यशोदा मैया को, वैसे ये भक्त प्रभुपाद जी को छोड़ के गए, इतना सारा हम सुन बोले तो प्रभुपाद जी को मुंह दिखाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि प्रभुपाद जी सेंटर में नहीं है, कहीं दूसरी जगह गए, तो सोचे ये अच्छा मौका है मेरे लिए, अभी जाके मैं गोविंदास में प्रसाद खा के आऊंगा। तो उन्होंने छुपके हुए आए, और छुपके हुए आते वक्त उनको पता नहीं था कि उसी दिन प्रभुपाद जी उस सेंटर में आए थे, और उन्होंने प्रसाद खाए गोविंदास में, भरपूर खाए, एकदम मजा से खाए, और छुपके हुए खा के किसी को मुंह नहीं दिखा रहे थे, छुपके हुए सीढ़ियां उतर रहे थे, फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रहे थे, और सीढ़ी उतरते वक्त अचानक से प्रभुपाद जी सीढ़ी से ऊपर आ रहे थे, और अचानक से उनका नजर प्रभुपाद जी को भी, अरे बाप रे गया मैं अभी, और प्रभुपाद जी उनको देखे, ओ यू हाउ आर यू, आप कैसे हो, और उनको कंधे पे ऐसे हाथ थपा, आप ठीक हो, हाँ मैं ठीक हाँ मैं ठीक हूँ। तो देखिए इतना होने के बाद भी प्रभुपाद जी का कृपा देखिए, इतना प्रभुपाद जी के बारे में निंदा किया था फिर भी प्रभुपाद जी भूले नहीं थे उनको, तुरंत उनको, गुरु महाराज भी ऐसे करते हैं ना कभी कभी, इतना कुछ हम लोग बदमाशगिरी करते हैं फिर भी गुरु महाराज कैसे हैं आप, ठीक हैं हा? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का कृपा देखो, आप ठीक हैं करके पूछे, फिर बाद में बोले
आप प्रसाद लिए? बोला कि हाँ लिया गोविंदा सिंह। बोला ठीक है, बहुत गुस्से में थे। फिर बाद में प्रभुपाद जी बोले आप मेरे लिए प्रसाद बनाएंगे आप? तो आजू बाजू में जितना शिष्य लोग थे एकदम चौंक गए, एकदम आश्चर्य हो गए। तो एक शिष्य बोला प्रभुपाद वो नॉनवेज खाता है, वो कंठी माला नहीं पहना है, तिलक नहीं लगाया, जप नहीं करता है। आई नो दैट, मुझे पता है आप मुझे शिक्षा मत दो। उनको फिर से पूछे आप मेरे लिए प्रसाद बनाना चाहेंगे यार? अब वो बेचारा क्या बोलेगा, सामने से प्रभुपाद जी बोले प्रसाद बनाओ। और प्रभुपाद बोले आप बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, अब मैं चाहता हूँ आज आप मेरे लिए मीन्स भगवान के लिए भोग बनाओ और भोग लगा के मुझे खिलाओ। ओके चलो प्रभुपाद मैं बनाऊंगा। तो उन्होंने प्रसाद बनाए, उस दिन भोग बनाए और बहुत उनको याद था ना, सब बनाए थे पहले, बहुत सेवा किए थे प्रभुपाद जी का। भले उन्होंने सब कुछ भूल गए थे मगर बहुत अच्छी तरीके से भोग बनाए उन्होंने, बहुत सारा आइटम बनाए, प्रभुपाद जी का जो जो पसंद है सब बनाए और सब कुछ भोग लगाए और प्रभुपाद जी को ला के दिए। और ला के दिए, प्रभुपाद प्रसाद का ले रहे थे और ये बेचारा इतना रोने लग गया, इतना रोने लग गया और प्रभुपाद की चरण पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, प्रभुपाद ने बहुत बड़ा अपराध किया आपके चरणों में, मैं बहुत बड़ा अपराध किया, मैं आपको छोड़ के चला गया, मैं प्रभुपाद आज से प्रतिज्ञा लेता हूँ, आपको वचन देता हूँ, गलती से भी आज से मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तो देखिए सिर्फ कृपा प्रभुपाद जी का, अगर प्रभुपाद जी नहीं पूछते थे उनको आप मेरे लिए प्रसाद नहीं बना तो बस हरे कृष्णा बोल के चले जाते थे, फिर कभी नहीं आते थे वो। मगर सिर्फ प्रभुपाद जी ने चाहते थे कि वो किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए रहे, और हर भक्त यही चाहते हैं कि हर भक्त किसी ना किसी तरीके से भक्ति में जुड़े हुए हैं, वो छोड़ के ना जाए इसको उनको। प्रभुपाद जी ऐसा बना दिए इसको उनको, अगर हम थोड़ा भी छोड़ के चले जाएंगे तो हम नहीं रह पाएंगे, जैसा कि पानी के बिना मछली तड़पता है ना, नहीं रह पाएगा मछली पानी के बिना, पानी से बाहर निकाल के थोड़ी देर रुको मछली कितना तड़पता है, तो प्राण है पानी, जीवन है प्राणी पानी। तो ऐसा भक्त का जीवन क्या है, भक्त का संग है। इस भक्त ने बोल रहा है कि प्रभुपाद मैंने भक्तों का संग छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दिया, मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा ऐसा, मैं छोड़ के जाऊंगा नहीं। एक भक्त थे बोले कि बहुत भक्ति कर लिया मैंने, प्रभुपाद के समय नहीं, अभी बहुत जप कर लिया, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है जप में, अभी थोड़ा बाहर थोड़ा घूम के आता हूँ, थोड़ा समुद्र में जाके थोड़ा सर्फिंग करके आता हूँ मैं। उनका इच्छा हो गया समुद्र में सर्फिंग करना। तो अचानक से उन्होंने बिना बोल के चले गए और समुद्र में गए तैरने लगे। आपको तो पता रहेगा विदेशी भक्त बहुत तो एक्सपर्ट रहते हैं समुद्र में तैरना, अभी भी अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे तो विदेशी भक्त बहुत अंदर तक जाते हैं समुद्र के, उनको पता रहता है समुद्र में तैरना। तो तैरने के लिए गए, तैर रहे थे अचानक से एक शार्क मछली, शार्क है ना, शार्क मछली अचानक से उनकी तरफ आ रहा था। वो बेचारा घबराने लग गया, अभी शार्क मछली आ रहा है मैं क्या करूं, और उनकी इन्हीं की तरफ आ रहा है शार्क मछली, कुछ खतर मैं सुना हूं मगर कैसा है मुझे पता नहीं, उसका अनुभव नहीं है, वो बहुत खतरनाक होता है, मार देता है ऐसा करके, मैं अचानक वो आदमी को मार देता है ऐसा। तो शार्क मछली उनकी तरफ आ रहा है, इन्होंने देखा वो बहुत अंदर तक चले गए थे, अभी कुछ सहारा नहीं था, किधर जाएंगे, वो तैर के आना चाहते हैं फिर भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उनकी तरफ आ रहा है जो बहुत खूब तेज गति से आ रहा था। तो अभी बोले क्या करूं, क्योंकि ना ये इस्कॉन में थे, उनको पता है क्या करना चाहिए, कौन सी समय में कौन सा बटन दबाना चाहिए। तो बोले कि नरसिंह भगवान का आरती गाना चाहिए तो शायद संकट से दूर हो जाएगा। तो नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाल गाय ने पूरा नरसिंह आरती गा लिए, फिर भी देखे सात मंत्री उनकी तरफ ही आ रहा है। अरे बाप रे अभी क्या करो, नरसिंह आरती के बाद तुलसी आरती है, तुलसी आरती पूरा गा डाले, फिर भी वो सात मछली उन्हीं की तरफ आ रहा था। अभी घबरा, अभी क्या कौन सा आरती है, गौर आरती भी गा डाले, गुरु पूजा भी गा डाले, फिर भी सात मछली ने, फिर अंतिम में सात आरती मंगल आरती भी खत्म हो गया तुरंत, और मन में गा रहे जोर जोर से अभी क्या करो। ये बोले कि हे भगवान मैं गलती से भी आज से कभी इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, अभी बचा डाला मुझे। तो ये जब ये बोले कि मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा प्रभुपाद जी की संस्था को, देखे शार्क मछली नजदीक तक आके अपना रास्ता घुमा डाला, उधर से चला गया। ये भक्त आके प्रभुपाद जी के चरण पकड़ के बोले प्रभुपाद ने बड़ा गलती किया था, आज मुझे छोड़ के गया था, मैं यहाँ तो सर्फिंग करने के लिए शार्क मछली मुझे अटैक किया, मैं प्रभुपाद जी से कभी नहीं जाऊंगा। देखो कितना संकट है अगर इसको हम छोड़ के जाएंगे। एक भक्त था वो एकदम निष्पक्ष ले थे, मुझे जाना ही है कैसे भी करके छोड़ के जाना ही है, बहुत हो गया अभी। तो उन्होंने कोई किसी भक्त का बात नहीं सुन रहे थे, एकदम हट के थे, मुझे जाना है, मुझे अभी नहीं रहना है यहाँ पे, आश्रम में नहीं रहना है। कभी कभी ऐसे होता है ना हमारे आश्रम में, नहीं अभी मैं जाऊंगा दूसरे मंदिर में जाऊंगा, हमारे गिरिधारी प्रभु नहीं मुझे अभी यहाँ पे नहीं जम रहा है, मुझे जाना है दूसरी जगह, ऐसे होता है ना। कभी कभी ऐसे कुछ हो जाता है तो भक्त लोग सोचते हैं कि शायद मैं दूसरी जगह में जाऊंगा तो शायद सुखी हो जाऊंगा, नहीं ये गलत चिंता है, गलत धारणा है, यहीं पे रह के सेवा करना चाहिए, कहाँ दूसरी जगह जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, है ना। तो एक्चुअली देखा जाए तो मीरा रोड के भक्तों का प्रेम कहीं पे इतना प्रेम नहीं है, मैं देखा हूँ यहाँ पे जो भक्त है खास करके ब्रह्मचारी और कांग्रीगेशन इतना प्रेम है आपस में, कहीं मंदिर में इतना प्रेम नहीं है। हम लोग वृंदावन में 4 महीना रुके थे, हमको पता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मीरा रोड में ज्यादा ही प्रेम है भक्तों का, एक एक दूसरे के अंदर बहुत प्रेम है। तो वो भक्त किसी का बात नहीं सुने, बस निकल गए जाने के लिए। और प्रभुपाद जी का आदत था, पहले पहले उन्होंने जो मंदिर है उसके दरवाजे के पास एक गुलाब जामुन का डब्बा रखा करते थे, उसमें गुलाब जामुन हमेशा भरा हुआ रहता था। तो भक्त निकल रहे थे जाने के लिए, अपना बैग लेके निकल रहे थे, तो निकलते लिखते उनका नजर गुलाब जामुन के ऊपर पड़ गया। बोले ठीक है, ऐसे तो जा ही रहा हूँ, एक गुलाब जामुन खा के ही जाता हूँ, पता नहीं फिर से कब आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो उन्होंने एक गुलाब जामुन निकल के खाया, क्या रे बहुत अच्छा है, ऐसे जा ही रहा हूँ और एक खा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने और एक गुलाब जामुन खा के खा लिए। बोले नहीं नहीं आज नहीं जाता हूँ, कल जाता हूँ, छोड़ो। वापस आ गए भक्त लोग, कुछ क्या हो गया आप जा रहे थे ना। बोले कि नहीं नहीं मैं कल जाऊंगा, आज मेरा मूड नहीं है जाने का। तो दूसरे दिन निकले, दूसरे दिन बोले कि चलो आज तो जा रहा हूँ, आज थोड़ा 3-4 गुलाब जामुन खा के चले जाऊंगा। और हमेशा प्रभुपाद जी का बोले थे प्रभुपाद जी, वो गुलाब जामुन का डब्बा कभी खाली नहीं होना चाहिए, भरे ही रहना चाहिए, कोई भी आता है उसको खाएगा उसको बता दे। तो ये भक्त दूसरे दिन की देखे 4-5 गुलाब जामुन खा लिए, बोले कि नहीं यार आज नहीं जाऊंगा कल जाऊंगा, फिर चले गए। तीसरे दिन निकले, बोले कि है मुझे जाना ही नहीं, यहीं पे रहना है, वापस आ गए और कभी नहीं गए छोड़ के इसको। तो ऐसा है, चलो प्रभुपाद जी ऐसे बना दिए ना, कोई छोड़ के जा ही नहीं पाएगा इसकोन को, ऐसा एकदम इतना सुंदर तरीके से, इतना अच्छा आरती है, प्रताप है, भक्तों का संग कौन छोड़ के जाना चाहेगा, है कि नहीं। तो इतना सुंदर है, ऐसे बहुत सारा स्टोरीज में वृंदावन में लिखा था, मगर टाइम हो गया तो प्रभु जी का कीर्तन भी है चंद्रो का। एक एक छोटा सा मैं बता देता हूँ। एक बार श्री प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बता रहे थे कि आवर टेम्पल्स और फर्स्ट क्लास, हमारा मंदिर सारे मंदिर फर्स्ट क्लास मंदिर है, हमारा सारा इस्कॉन फर्स्ट क्लास है, और हमारा डीटीस हमारा विग्रह फर्स्ट क्लास विग्रह है, और हमारा प्रसादम मंदिर का फर्स्ट क्लास है, और डिवोटी सार आल्सो फर्स्ट क्लास, हमारा हमारे भक्त भी एकदम फर्स्ट क्लास है, इतना फर्स्ट क्लास है फिर भी लोग क्यों नहीं आते हमारे संस्था में, अलग अलग जगह में जाते हैं। बोले कि दे आर आल्सो फर्स्ट क्लास रास्केल्स, इतना हो फर्स्ट क्लास होने पर भी हमारे मंदिर में नहीं आते हैं लोग, कम आते हैं क्योंकि वो लोग फर्स्ट क्लास रास्केल्स इसलिए नहीं आते हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं रास्केल्स रास्केल्स, है ना। तो ऐसा है, तो प्रभुपाद जी का इतना ये है। आप एक भक्त बता रहे थे वृंदावन में क्लास में कि जैसे कि एक माचिस है ना, माचिस का एक कांडी जलाते हैं, वो 10 जन के लिए भी पकवान बना सकता है, एक कांडी सी आग से 10 जन का भी पकवान बन सकता है, वही आग से 100 जन का भी पकवान बन सकता है, वही आग से 1000 लोग के लिए भी प्रसाद बन सकता है, वही आग से लाखों लोग के लिए प्रसाद बन सकता है। प्रभु बोल रहे थे वो प्रभुपाद जी ऐसा है एक माचिस की कांडी की तरह, वो 10 जन को क्या 1000 जन के लिए लाखों जन को भी भक्त बना सकते हैं। वैसे एक भक्त बता रहे थे वृंदावन में, बहुत अच्छा बता रहे थे प्रभुपाद, और बता रहे थे जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड की जंगल, ये राधा गोविंद महाराज कथा में बता रहे थे वृंदावन में जब हम थे, बता रहे थे जैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल में गए थे तो शेर चीता सारे प्राणी सारे पक्षी पशुओं को हरिनाम से नचा दिए थे। तो महाराज बता रहे थे कि तो प्रभुपाद जी ऐसा है अलग अलग देश के अलग अलग जानवरों को बुला के एक ही स्टेज में हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा नचा दिए थे। बोलते हैं कि साउथ इंडियन से साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड से जापान से थाईलैंड से अलग अलग देश के लोग है एक ही जगह में प्रभुपाद जी हरि नाम लेके उनको एक ही जगह में मिलके नाचे, जैसे कि एक शेर के साथ एक क्या बोलते हैं हिरण को नहीं जमता है, मगर ऐसे हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से एक दूसरे को आलिंगन करने लग गए थे। ऐसा एक देश के व्यक्ति के साथ दूसरे देश के व्यक्ति को कभी नहीं जमता है, कभी नहीं जमेगा, मगर प्रभुपाद जी के हरि नाम के द्वारा, प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा एक दूसरे से गले लगा रहे हैं हरि नाम के द्वारा। तो प्रभुपाद जी का इतना ताकत है हाँ उनका प्रचार का, तो प्रभुपाद जी अकेले काफी है हाँ पूरा। एक्चुअली प्रभुपाद जी भगवान का ही पार्षद है, भगवान का जब अपने नाम प्रचार करने का रहता है तो उनका एक पार्षद को भेजते हैं हाँ। और कैसे भेजेंगे, अभी कलयुग में तो ऐसा तो नहीं नारद महर्षि आएंगे हमारा हमको उपदेश देने के लिए, जैसा ध्रुव महाराज को दिए थे, प्रहलाद महाराज को दिए थे। नारद मुनि नहीं आ पाएंगे कलयुग में, और आएंगे भी तो उनको इतना रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने पार्षदों को मनुष्य के शरीर में इस धराधाम में भेजते हैं कि जाओ मेरे नाम प्रचार करो। इसलिए प्रभुपाद जी जैसा व्यक्ति को भेजते हैं, प्रभुपाद जी हमेशा अपने भगवान के धाम में उनकी लीला में रहते हैं, मगर फिर भी प्रभुपाद जी इस धराधाम में इसलिए आते कि भगवान ने उनको भेजे थे और जाके हरि नाम का प्रचार करने के लिए। और प्रभुपाद जी जैसा ही संत है जो कि हमको तार सकते हैं और कोई नहीं तार सकते। कि एक बार सार्वभौम प्रभु बता रहे थे कि जैसा कि एक चीटी है, एक चीटी है, हमको अगर यहाँ से अमेरिका जाना रहेगा तो हमको प्लेन का टिकट बनाना पड़ता है, उसके लिए वीजा चाहिए, उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, इतना सारा रूल्स रेगुलेशन है और इतना ही लगेज ले सकते हैं, है कि नहीं। मगर एक चीटी रह जाएगा, अगर उसकी लगेज के अंदर कोई स्वीट का डब्बा, उसमें एक चीटी आ गया, और चीटी को अमेरिका जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीजा का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई टिकट का जरूरत नहीं पड़ता है। और साधुओं को बता रहे थे उसी तरह अगर हम लोग कोई भक्त का चरण पकड़ के रखेंगे तो हमको बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, बिना टिकट का भगवत धाम चले जाएंगे। तो इसीलिए हमको प्रभुपाद जी का चरण को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। ऐसा बहुत स्टोरी है मगर टाइम हो गया, क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, सारे गौर भक्त वृंद की, गौर हरि प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।